लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। नवीकृत गहराई से पुनर्मिलन संस्कार का अनुभव प्राप्त करने के लिए आइए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, ताकि ईश्वर की असीम दया का स्वाद ले सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्तिगीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती हम सभी भाई बहने हैं की चर्चा कर रहे हैं। यह विश्व प्रेरितिक पत्र हमें भ्रातृत्व और सामाजिक बंधुत्व में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है। संत पापा फ्रांसिस की चाह यही है कि हम मानव सम्मान को पहचान प्रदान करते हुए वैश्विक भ्रातृत्व के लिए एक सार्वभौमिक आकांक्षा को पुनर्जन्म दें। हम सभी नर और नारी के रूप में भ्रातृत्व के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। श्रोताओं, हमने फ्रतेल्ली तुत्ती के चौथे अध्याय पूरे विश्व के लिए खुला हृदय की चर्चा करते हुए हमने अपने पिछले प्रसारण के अंत में कहा कि कृतज्ञमय भ्रातृत्व के बिना जीवन उन्मत्त वाणिज्य का एक रूप बन जाता है। जब हम निरंतर इस बात का हिसाब किताब करते हैं कि हमने क्या दिया और बदले में हमें क्या मिला है। हमें यह जीवन मुफ्त में मिला है, इसके लिए हमने कोई कीमत नहीं चुकाई है। अतः हमें चाहिए कि हम बिना किसी वस्तु की चाह किए बिना एक दूसरे की भलाई करें, जैसे कि यीशु ख्रिस्त ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। श्रोताओं, विश्व के विभिन्न देशों का सही मूल्य इस रूप में मापा जाता है कि वे एक देश के रूप में अपने को कैसे देखते हैं, वरन इसके द्वारा भी कि वे किस हद तक अपने को बड़े मानव परिवार का अंग समझते हैं। यह खास तौर पर आपदा के समय में देखा जाता है। राष्ट्रीयवाद के संकुचित विचार कृतज्ञता के अर्थ को समझने में अयोग्य बना देते हैं। वे अपने में यह सोच रखते हुए गलती करते हैं कि हम दूसरों की बिखरी स्थिति की ओर देखे बिना स्वयं में विकास कर सकते हैं। अपने द्वार को दूसरों के लिए बंद करते हुए हम बेहतर रूप में सुरक्षित रह सकते हैं। प्रवासियों को हड़पने वालों की तरह देखा जाता है, जिनके पास देने को कुछ भी नहीं है। यह हमें इस विश्वास की ओर अग्रसर करता है कि गरीब खतरनाक और व्यर्थ के हैं, जबकि शक्तिशाली अपने में उदारवादी भलाई करता है। केवल एक सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति जो सहज ही और कृतज्ञता में दूसरों का स्वागत करती है, भविष्य का निर्माण करेगी। हम इसका ध्यान सदैव अपने जीवन में रखें कि वैश्वीकरण और स्थानीयकरण में सदैव एक तरह का जन्मजात तनाव बना रहता है। हमें अपने में वैश्विक बातों का ध्यान देने की जरूरत है, जिससे हम संकीर्णता और सामान्यता से दूर रह सकें। यद्यपि हमें स्थानीय बातों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है, जिससे हमारे पैर जमीन में बने रहें। दोनों ही चीजें हमें एक साथ दो गहरी चीजों में गिरने से बचाती हैं। वैश्विकता के संबंध में हम अमूर्त बातों में फंसे रह जाते हैं, तो वहीं स्थानीयता हमें प्रचलित दंत कथाओं के संग्रहालय में सीमित कर देती है। एक ऐसी दुनिया जहां हम एक ही चीज को बार बार करने का प्रयास करते हैं, जहां नवीनता से आने वाली चुनौती और उसकी सुंदरता की सराहना करने में हम अपने को असमर्थ पाते हैं, जो हमारे लिए सीमाओं से परे ईश्वर की ओर से आता है। हमें अपने में वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है, जिससे हम अपने को अपने क्षुद्र प्रांतवाद से बचाकर रख सकें। जब हमारे घर निवास स्थल नहीं बनते, तो हम अपने को एक चार दीवारी के अंदर एक कैद खाने में बंद होने का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति में वैश्विकता हमारे लिए सुरक्षा का कार्य करती है, लेकिन वहीं हमें स्थानीयता का आलिंगन स्वेच्छा से करने की जरूरत है, क्योंकि हम उसमें कुछ उन बातों को पाते हैं जो वैश्विकता में नहीं पाई जाती है। यह अपने में एक खमीर के समान है जो हममें समृद्धि पूरकता की चमक को लाती है। वैश्विक भ्रातृत्व और सामाजिक मित्रता इस भांति हमारे लिए दो अटूट और समानांतर महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो हर समाज के लिए जरूरी है। उन्हें एक दूसरे से अलग करना एक दूसरे को विकृत करते हुए एक खतरनाक ध्रुवीकरण तैयार करने के समान है।
मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने।
श्रोताओं, समाधान एक खुलापन नहीं जो स्वयं अपनी समृद्धि का बखान करता है। जैसे कि अपनी पहचान के बिना दूसरों से वार्ता करना संभव नहीं है, ठीक उसी भांति हम एक दूसरे के लिए अपने को नहीं खोल सकते हैं, यदि हमें अपने जर और जमीर अपने लोगों से और स्वयं अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं है। मेरा मिलन दूसरों के संग सुदृढ़ता से नहीं हो सकता यदि मैं स्वयं अपने में सुदृढ़ अनुभव नहीं करता हूँ, क्योंकि इसी आधार पर ही मैं दूसरों के द्वारा आने वाले उपहारों को अपने में ग्रहण करता हूँ और अपनी वास्तविक उपहारों को दूसरों के लिए अर्पित करता हूँ। मैं अपने से अलग दूसरों का स्वागत करने, उनके अद्वितीय गुणों को पहचानने के योग्य केवल तब होता हूँ जब मैं अपने को अपने लोगों और अपनी संस्कृति में गहराई से जुड़ा हुआ पाता हूँ। हर कोई अपनी मातृभूमि और गांव को प्रेम करता और उसकी चिंता करता है, जैसे कि वह अपने घर से प्रेम करता और व्यक्तिगत रूप में उसके रखरखाव हेतु उत्तरदायी होता है। जन सामान्य भलाई हमसे अपने जन्मभूमि से प्रेम और उसकी रक्षा करने की मांग करती है। ऐसा यदि नहीं होता तो एक देश की आपदा पूरी पृथ्वी को प्रभावित करेगी। यह हमारे लिए संपत्ति के सकारात्मक अर्थ को प्रस्तुत करती है, जिसके फलस्वरूप हम में से प्रत्येक जन उन सारी चीजों की देख रेख करते और उन्हें उपजाऊ बनाते जिन्हें हम अपने में धारण करते हैं, जिससे वे सबों की भलाई के लिए उपयुक्त हो सके। यह स्वास्थ्य और विनिमय को भी समृद्ध बनाती है। किसी एक खास परिवेश में और विशेष संस्कृति में पलना बढ़ना हमें जीवन की नई बातों को जानने में मदद करती है, जिसे दूसरे सहज से नहीं जान सकते हैं। यह जरूरी नहीं दुनिया अपने में एकल प्रचलित सांस्कृतिक मॉडल के आधार पर नरम, एकरूप और मानकीकृत हो। यदि ऐसा होता तो यह सांस्कृतिक रंगों की विविधता को एक रास्ता में बदल देती है। पुराने व्यवस्थान में बाबुल के मीनार में हम इसी प्रलोभन को देखते हैं। एक मीनार का निर्माण करने की कोशिश जो स्वर्ग को छूती हो, बहुसंख्यक लोगों की विविधता में एकता के निशानी नहीं थी, जहां वे विभिन्न तरह की भाषाएं बोलते थे। इसके विपरीत यह एक नासमझ कोशिश थी जो घमंड और महत्वाकांक्षा में उत्पन्न हुई थी, जहां ईश्वरीय योजना के परे लोगों ने एक एकता का निर्माण करने की बात सोची। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
तेरे दर पे न आया कभी, न ये मस्तक झुकाया कभी, पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैंने बाती जलाई नहीं, तेरी सच्चाई पाई नहीं, तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना, मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैंने माना ना मन का कहा, सारा जीवन भटकता रहा।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने जैव विविधता पर यूनेस्को मंच को संदेश भेजा। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे ओजोले को प्रेषित संदेश में संत पापा ने जलवायु परिवर्तन और गरीबी, नैतिक सिद्धांत एवं वैज्ञानिक जिम्मेदारी पर सभा में भाग लेने के निमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया तथा कहा कि यूनेस्को इस सभा के द्वारा हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक समस्या पर ध्यान देना चाहता है। प्रेषित संदेश में संत पापा ने कहा, वास्तव में जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष एवं अत्यधिक गरीबी के विरुद्ध संघर्ष जो जटिल एवं एक दूसरे से जुड़े मामले हैं, इसके लिए एक नए विकास मॉडल को पुनः परिभाषित करने की जरूरत है जो हर एक व्यक्ति एवं व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को केंद्र में रखे। इसके लिए सम्मानित एवं संरक्षित किए जाने वाले मूलभूत स्तंभ के रूप में एक ऐसी पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है जिसमें एकजुटता और राजनैतिक उदारता की नैतिकता शामिल हो। वास्तव में केवल इसी से सार्वभौमिक आम हित प्यार की सच्ची सभ्यता, जहां उदासीनता एवं बर्बादी की महामारी के लिए कोई जगह नहीं होता, उसे बढ़ावा दिया जा सकता है। सबसे गरीब लोगों पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, हमें वर्तमान सामाजिक पर्यावरणीय संकट की प्रतिक्रिया पर विचार करने, हमारे आम घर की नाजुकता के लिए जिम्मेदार तरीके से कार्य करने का आह्वान कर रहा है, ताकि हमारे रहने की स्थिति, स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार और रोजगार के लिए नए अवसर पैदा किए जा सकें। संत पापा ने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में पेरिस समझौता सटीक है जो हमें धीरे धीरे इस तथ्य से अवगत करा रहा है कि जलवायु परिवर्तन को तकनीकी मुद्दे की अपेक्षा अधिक नैतिक रूप में देखा जाना चाहिए, तभी हमारे लिए आवश्यक निर्णायक मोड़ संभव होगा। यदि हम शिक्षा पर निवेश करेंगे तो नई पीढ़ी की जीवन शैली में सृष्टि के प्रति सम्मान बढ़ेगा। यह महत्वपूर्ण है कि युवाओं को सृष्टि की देखभाल एवं दूसरों का सम्मान करना सिखाया जाए, उन्हें उत्पादन एवं उपभोग की नई आदत को बढ़ावा दिया जाए, ताकि पर्यावरण में व्यक्ति को स्थान देने वाले आर्थिक विकास का एक नया मॉडल विकसित हो। संत पापा ने कहा कि इसको प्राप्त करने के लिए आपका संगठन महत्वपूर्ण है और मुझे खुशी है कि यह सभा जलवायु आपातकाल के नैतिक प्रभावों पर आधारित है, ताकि वैज्ञानिक पहलुओं को गहरा किया जा सके। संत पापा फ्रांसिस ने पुण्य सप्ताह के दौरान जरूरतमंद भाई बहनों की मदद करने हेतु प्रोत्साहन दिया। उन्होंने 30 मार्च के ट्वीट संदेश में लिखा, दैनिक क्रूस रास्ता के साथ साथ हम कई भाइयों और बहनों की कठिनाइयों को देखते हैं। हम पार ना हो जाएं, बल्कि अपने हृदय को दया से द्रवित होने और उनके निकट जाने दें। और आज के दूसरे ट्वीट संदेश में संत पापा ने कहा, यीशु क्रूस पर उठाए गए कि वे हमारे दुख में उतरें, हमारे मन में अनुभव की गहराई तक पहुंचें, हमारे नजदीक आएं और हमारी पीड़ा एवं मृत्यु में हमें ना छोड़ दें, हमारी मुक्ति करें, हमें बचाएं। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपनी मृत्यु से हमें मुक्त करते हैं। इस तरह वे हमारी मृत्यु को एक नया आयाम, एक नया दृष्टिकोण देते हैं। यह जीवन का अंत नहीं है, बल्कि पुनर्जीवित प्रभु में अनंत जीवन की ओर एक द्वार है। उक्त बातें पोलैंड के कैथोलिक धर्म अध्यक्ष सम्मेलन के महासचिव मोनसिन्योर आर्तुर्जी मेजिंस्की ने कही है, जिसको पुण्य सप्ताह के अवसर पर धर्म अध्यक्ष सम्मेलन की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा है कि पुण्य सप्ताह एक ऐसा समय है जब हम जीवन के अर्थ और हमारे ख्रिस्त बुलाहट के अर्थ पर चिंतन करने के लिए बुलाए जाते हैं। लुबलिन के धर्माध्यक्ष ने कहा है कि यीशु ने किस तरह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान से हमारे इस दुनिया में पीड़ा और मौत को अर्थ प्रदान किया है, खासकर इस कोरोना वायरस महामारी के समय में जब हम सभी बीमारी और मौत से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। इस आधुनिक समाज में जो पीड़ा से संबंधित विचारों को दूर कर देना चाहता है, वह भी मौत के रहस्य पर चिंतन करने के लिए मजबूर है तथा इस नाजुक एवं चनभंगुर जीवन के अर्थ पर सोचने के लिए प्रेरित हुआ है। पास्का के 3 दिवसीय धर्म विधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देते हुए उन्होंने विश्वासियों से कहा है कि वे सभी सुरक्षा उपायों एवं स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करें और यदि संभव ना हो तो समारोहों में संचार माध्यमों द्वारा भाग लें। मोनसिन्योर ने याद दिलाया है कि ख्रिस्तों का जीवन एवं कलीसिया की पूरी धर्म विधि का लक्ष्य इन 3 पौत्र दिनों में निहित है जब दुनिया की मुक्ति के कार्य संपन्न किए गए थे। पास्का त्रिदियुम ही पूजन पद्धति वर्ष की चरम सीमा है। इन्हीं 3 दिनों में हमें ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में भाग लेने का अवसर मिलता है, जो हमें पाप एवं मृत्यु पर उनके विजय की सच्चाई के बारे याद दिलाते हैं। इंडोनेशिया के मकासर स्थित यीशु के पौत्र हृदय महागिरजाघर में खजूर रविवार को हुए बम धमाके की सभी कलीसियाओं एवं धर्मों के धर्मगुरुओं ने कड़ी निंदा की है। महागिरजाघर में आत्मघाती बम धमाके के बाद पुण्य सप्ताह समारोहों के दौरान ख्रिस्तों की सुरक्षा के उपाय कड़े कर दिए गए हैं। खजूर रविवार को मिस्सा के अंत में हुए बम धमाके में 2 अपराधी मारे गए और कम से कम 20 लोग घायल हैं। इस घटना की निंदा विश्व भर में की जा रही है एवं इंडोनेशिया की कलीसिया के प्रति एकात्मकता व्यक्त की जा रही है। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान पीड़ितों के लिए प्रार्थना का आह्वान किया था। इंडोनेशिया के कैथोलिक धर्म अध्यक्ष सम्मेलन के अंतर धार्मिक वार्ता विभाग के अध्यक्ष योहन्स हारून युओनो ने एक बयान जारी कर इंडोनेशिया में हमला के लिए गहरी चिंता, प्रार्थना और दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह सिर्फ कार्तिक समुदाय पर नहीं है बल्कि पूरे देश पर हुआ है। यह मानव प्रतिष्ठा को नीचा दिखाता, मानव मूल्य को नष्ट करता और हमारे प्यारे द्वीप समूह में आतंकी कृत्यों की सूची को जोड़ता है। उन्होंने कार्तिक एवं इंडोनेशिया के सभी लोगों का आह्वान किया है कि वे शांत एवं जागरूक रहें। धर्माध्यक्षों ने इंडोनेशिया की सरकार, सशस्त्र बल और देश की पुलिस के प्रति पूर्ण भरोसा जताया है एवं आशा व्यक्त की है कि हमला विभिन्न धर्मों के विश्वासियों एवं आस्था के लोगों के बीच वर्षों से स्थापित संबंध को कमजोर एवं क्षतिग्रस्त नहीं कर पाएगा। उका न्यूज के अनुसार इंडोनेशिया में कलीसिया समुदाय के अध्यक्ष ने पीड़ितों के प्रति संवेदना प्रकट की है एवं देश के ख्रिस्तियों का आह्वान किया है कि वे नहीं डरें बल्कि सावधान रहें। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो ने घटना की निंदा की और कहा कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ अपराध है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।